پہلے بچی پوری ہونی چاہیے یا پہلے رادھا کرشن جیسے بچوں کا جنم ہونا چاہیے؟ پہلے تو بٹی پوری ہو, پھر بچے سے سالم بدھی بنے, سالم بدھی بنے, پرسارتھی بنے, کنچن کایا بنائے, تب سمپنتا ہو, پھر رادھا کرشن جیسے بچوں کا جنم ہو. دنیا میں بٹی تو چلتی رہے گی انت تک.
2018 میں رادھا کرشن کی جنم ہوں گی,
ہوگا
اس کے لیے مرلی پوائنٹ کیا مرلی میں کس بات سے لاگو ہوتا ہے؟
جب رادھا کرشن کا سوئمبر ہوا ہوگا, رادھا کرشن کا جب کورونیشن ہوتا ہے لکشمی نارائن بنتے ہیں تو 18-20 سال کے ہوئے ہوں گے, بولا ہے مرلی
میں وہی سب سے
18 سال گھٹا دیے
36 سے 18 سال
2018
آتا ہے. بابا جب رام والے آتما نارائن بنتے ہیں تب بھرن رام آنا جانا کرتے ہیں کر سکتے ہیں, نارائن کیسا جو بنتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں
جی,
جو بنتے جاتے ہیں وہ بھی آنا جانا کر سکتے ہیں,
ادیوگ سے آنا جانا کر سکتے ہیں. آپ بھی کر رہے ہیں ابھی کوئی الپ کال کے لیے اور کوئی جتنا چاہے اتنے کال کے لیے.
18 سال ہوئے ہو گئے کہا نا, جو مرلی تو شیو باپ نے چلایا, تو ساری بہت باتیں ایسا ہے ہو سکتا ہے.
ایکوریٹ نہیں بتاتے ہیں
کیوں,
اپروکسیمیٹ بتاتے ہیں
وہی کیوں, شیو باپ کو تو ایکوریٹ جانتا ہے نا.
میں تو پھر اگر وہ ایکوریٹ بتا رہے تو جیسے وناش کی بات ہے, وناش کی بات ایکوریٹ بتا رہے ہیں کس تاریخ کو ہوگا کس ٹائم پہ ہوگا تو ڈیٹ کانسس ہو جائیں گے
تو بچوں کو ہوم ورک نہیں رہے گا.
ہاں جی ہو گیا ہے, ہاں فائنل ایگزامیشن نہیں چل رہا ہے ابھی
بابا, آج کا ڈیم پرفیکٹ ہوئے نا
تو فائنل ایگزام چل نہیں رہا ابھی, ابھی تو بولا آپ نے توانی میں کہ لیٹ کا بورڈ لگا ہے, آپ نے توانی میں بولا کہ نہیں لیٹ کا بورڈ لگا ہے لیکن ٹو لیٹ کا بورڈ نہیں لگا ہے. تو فائنل پیپر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں وہ عالم چل رہے ہیں ہوگا تب دیکھا جائے گا. ٹو لیٹ کے بورڈ ابھی لگا تو نہیں ہے کہ بھائی آج کے دن میں کوئی نہیں آ سکتا, لیٹ کا ہی تو بورڈ لگا ہے, لیٹ ہو گئی لے لو لے لو.
ہم والے اپنا کو پیندم جانے کے آنے کے ٹریکر کیا ہے والے آتما کو آپ پیندم جانے کے اور آنے کے ٹریکر کیا رہتا ہے؟
مانا سنکلپ چلاتا رہے باپ سمان اسٹیج میں دھارن نہ کرے, تو کر سکتا ہے. تو نیاکاری اسٹیج ہو گئی, نسنکلپ اسٹیج ہو گئی, تو پرم نام میں ہی آتما محسوس کرے گی, شانتی محسوس کرے گی یا اشانتی محسوس کرے گی؟ سنکلپ چلایا مانا سنکلپ اس دنیا کی بات ہے, نیچے کی دنیا کی بات ہے, اور سنکلپوں سے بھی پرے کی اسٹیج ہو گئی مانے نشچن.
بابا جو اشٹ دیو ہیں وہ ہمیشہ بابا کو ہی یاد کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا شوٹنگ بابا کے ساتھ ہی ہوتا ہے,
ایسی کوئی بات نہیں.
تو ابھی مانا اس میں اونچ بنتے کیسے ہیں یاد سے تو نا
نمبر وار ہوتے ہیں
तो उनका शूटिंग और आत्माओं के संग नहीं होता?
हमारे साथ हो रही होगी
तो बाबा उनका तो वो तो सिर्फ बाबा को ही याद करते
हैं। थोड़ा थोड़ा तुमको भी याद करते होंगे।
पहले तो याद करते होंगे।
थोड़ा थोड़ा अगर तुमको याद करते होंगे तो आप श्रेष्ठ आत्मा हुए ना। क्या हो गया?
पूछना चाहते हैं कि अष्टदेव किसी आत्मा का, हम मान लो हमारा शूटिंग हम किसी आत्मा को याद कर रहे हैं उसके साथ हमारी शूटिंग हो जा रहा है, वो नहीं कर रहा है तो किसी को याद करते हैं
और वो नहीं याद कर रहा है, है? तो दोनों दोनों हाथ तो मिले नहीं, ताली बजेगी कैसे? शूटिंग होगी कैसे? एक तो याद करता है और दूसरा याद करता है कोई और को, तो लगाव कैसे जुटेगा?
तो बाबा सात जन्मों में जब वो राजा बनेंगे तो
कौन
आज या कोई भी तो उनकी शूटिंग तो किसी न किसी होगी ना, उनकी नहीं उनकी रानी तो कोई होगी ना।
हाँ तो वो राजा के साथ ज्यादा वफादार रहेंगे, रानी के साथ वफादार नहीं रहेंगे? कोई जरूरी है कि कोई किसी जन्म में युगल बन के रहता है और किसी राजा के राज्य में रहता है? तो जो युगल है उसकी उसके साथ वफादारी ज्यादा रहे और राजा के साथ वफादारी न रहे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई राजा के साथ ज्यादा वफादार रहे और रानी को वफादारी नहीं रहे। ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुआ? जो राजा के साथ वफादारी रखे वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। कोई होते हैं संबंध को ज्यादा महत्व देने वाले, वो यहाँ संगम में भी संबंध को ज्यादा महत्व देते होंगे। और कोई होते हैं विश्व कल्याण को महत्व देने वाले, संबंध को महत्व नहीं देते। विश्व कल्याण किसमें है, सारे राज्य का कल्याण किसमें है, इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं। संबंधों में फंस जाते हैं जिनकी बुद्धि, वो नीचे कुल के हुए, और जिनकी बुद्धि संबंधों में नहीं फंसती, श्रीमत में फंसी हुई है, विश्व कल्याण में बुद्धि लगी हुई है, तो उनके पाठधारी हुए ना। शिव है विश्व कल्याणकारी, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? विश्व कल्याणी होने चाहिए।
हाथ में ले जाते हैं उसका अर्थ क्या?
रावण
हाथ में लेने को ले जाते
हैं, प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो रावण के चंबे में नहीं फंसती कभी क्या? हैं? रावण की मुट्ठी में कभी नहीं आती? आती है। तो लिंग कौन है, कौन है आत्मा जो लिंग के रूप में गाई जाती है? प्रजापिता। हाँ जी,
बात से सर्व संबंध पर रखना तो चाहिए।
आप क्या समझते थे युगल के साथ रखना चाहिए?
बाप से बाप का ही संबंध,
बाप से सर्व संबंध, बाप के साथ एक संबंध नहीं, सब संबंधों की रचना बाप से मिले, नहीं तो कोई दूसरा खींच लेगा।
जिस संबंध में कमी रहेगा उस संबंध में
करते रहेंगे।
तो बाप से अलग अलग संबंध की रचना कैसा लेना है, भाई या
भाई दोस्त है
फ्रेंड तुम्हें माता
माता पिता
तुम्हें हाँ पिता तुम्हें वो बंधु सका
हाँ।
तो ये अलग अलग संबंध की रचना कैसे लेने इसका कैसा फीलिंग करना है,
अलग अलग संबंधों की क्या अनुभूति होती है, उतने से जन्म ली नहीं क्या,
जैसे जन्म लिया है तो इनमें संबंधों का अनुभव कम
तेसर जन्म और आत्माओं के साथ उन संबंधों का रस लिया है या नहीं लिया है,
जैसे जन्म लिया
है और आत्माओं के साथ लिया है,
लिया
चलो बाप के साथ नहीं लिया होगा तो बुद्धि में बात नहीं बैठेगी, और जिन्होंने बाप के साथ पूर्व जन्मों में तेसर जन्मों का संबंध लिया होगा तो उनकी बुद्धि में जट बैठेगी,
संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रचना होगी होगी ना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
संबंध वही जोड़ेंगे जिन्होंने 63 जन्म जोड़ा होगा कि सब जोड़ेंगे है? जिन्होंने बनी बनाई बन रही अब कछु बने नहीं ना है, क्या मतलब हुआ इसका, जिन्होंने 63 जन्म में जैसा जैसा पार्ट बजाया है वैसा ही संगम युग में अनुभूति करते हैं, या जिन्होंने जिसके साथ जैसा पार्ट बजाया है उसके साथ वैसा संगम युग में अनुभव करते हैं, अकेले बाप के साथ संबंध की अनुभूति की बात थोड़ा ही है,
तो अपने जन्मों पे जानने के लिए पहले सच्चे का पहला दूसरा जन्म वो जानना जरूरी है या पिछले जन्म समझना जरूरी है,
अपने जन्मों को जानने के लिए पहले आत्मा की शुद्धि जरूरी है, आत्मशुद्धि, आत्मा पवित्र बनती जाती है और अनेक जन्मों की अनुभूति होती जाती है, आत्मा अगर शीशे जैसी नहीं बनी, शीशा होता है ना तो उसमें पूरा अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, अगर गंदा शीशा होगा तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आत्मा भी एक प्रकार का शीशा बन जाए ट्रांसपेरेंट तो दिखाई पड़ेगा, अपना ही नहीं दिखाई पड़ेगा, संगी साथियों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा, इसलिए मधुबन को कहते हैं आरसी, मधुबन में जो आता है उसको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ता है, सबसे बड़ा आरसी है सबसे बड़ा शीशा दर्पण है बाप,
बोला कि तूने पांडव माना सारी दुनिया स्वर्ग को देखेगी,
दुनिया स्वर्ग को देखेगी, कोई अंदर की आंख से देखेंगे कोई बाहर की आंख से देखेंगे, बाहर से आंख से देखने वालों की संख्या कितनी होगी,
14.5
है,
14.5 तो बाबा ने बोला कि तुम पांडवों का किला ऐसे बन जाएगा जिसमें भिखारी घुस नहीं सकेंगे,
4.5 लाख के अलावा सब भिखारी हुए या निर्विकारी हुए
तो वो बिना देखे ऐसे ही समझ जाएंगे,
नंबर वार बुद्धि के अनुसार समझेंगे उतना नहीं समझेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ज्यादा समझेंगे या जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है वो ज्यादा समझेंगे,
ज्ञान लेते ही द्वापर की शूटिंग शुरू हो गई तो सत्य त्रेताई की शूटिंग पहले दिन में हो गया होगा,
ज्ञान लेते ही
जब एक ज्ञान में आया शुरू में
हाँ।
उसी समय से द्वापर की शूटिंग शुरू हो गया
तो दोनों ही शूटिंग शुरू होती है,
सत्य त्रेता की
जितना जितना श्रीमद पर चलते हैं उतना उतना सत्य त्रेता की शूटिंग होती है, और जितना जितना रावण की मत पर चलते हैं उतना द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है, ऐसे थोड़े ही कि गिरती कला की शूटिंग होती है, उठती कला की शूटिंग नहीं होती है।
शूटिंग में दोनों मिक्स होती है।
हाँ जी, जब जैसा स्थिति बनेगी वैसी शूटिंग होगी। त्रिशंकु स्वर्ग नहीं बनाता है, त्रिशंकु उसके कहा जाता है जो एक अपनी ताकत से उसे स्वर्ग में भेजना चाहता है और दूसरा उसको जाने से रोकता है, नहीं जाने देंगे, तो बेचारा बीच में लटक जाता है, न स्वर्ग में रहा न नरक में गिरा।
शुरू में आदि में भी ऐसा मिक्स मिक्स शूटिंग होता है 36 से भी
है,
36 में जो भी एडवांस की आत्माएं आए हैं,
हाँ?
तो पहले जन्म में भी बाप से मिला है,
हाँ?
तो उस समय भी मिक्स शूटिंग चला
नहीं चला कुछ, कोई ने बाप को फॉलो किया, कोई ने ब्रह्मा को फॉलो किया, तो शूटिंग नहीं चला। हाँ?
राम और कृष्ण है, वो एक के लिए नटराज का गायन है और दूसरे के लिए नटवर का गायन है।
हाँ जी,
एक तो एक पाव से नाचता है,
हाँ?
दूसरा दोनों तांगों से नाचता है।
कौन?
कृष्ण है,
दोनों तांगों से कहाँ नाचता है?
वो भी एक टांग है,
कृष्ण को भी एक टांग से दिखाया जाता है, नटराज को भी एक टांग से नाचता हुआ दिखाया जाता है। तो दोनों एक ही, अलग अलग है क्या? पर्सनैलिटी एक है या दो है? एक ही है,
माना एक टांग से नाचते, माना एक का मत पर चलना।
हाँ जी, सच तो बिठो नाच, सच के रास्ते पर चलेंगे तो नाचते रहेंगे, सच्चा एक ही है। एक का रास्ता भी एक ही है। Thank you. बन
बाबा सुनना और सुनाने की कहा ढंग को भक्ति मार्ग कहते हैं, समझना और समझाने के ढंग को ज्ञान मार्ग कहते हैं।
सुनना और सुनाना उसमें फर्क है, कोई सुनने के साथ समझते भी जाते हैं तो वो सुनना और सुनाना वो भक्ति मार्ग नहीं है क्या?
सुनना और समझना
कोई वैसे होते हैं सिर्फ सुनाने वाले सुना रहे हैं, जैसे आजकल महात्मा लोग संभवां युगे युगे हर युग में आता हूँ, उन्होंने सुना दिया और सुनने वालों ने सुन लिया कि हाँ भगवान हर युग में आता है, तो वो तो सिर्फ सुना और सुनाने वाले ने सुनाया, समझा नहीं कि हर युग में आने की क्या दरकार है। और यहाँ यहाँ हरेक के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो सुनाते समय खुद भी समझते हैं क्या कि कैसे संभव हम युगे युगे भक्ति मार्ग में ये जो गायन कर दिया है हर युग में मैं आता हूँ तो कैसे हर युग में आता हूँ, द्वापर युग में आता है क्या? भक्ति मार्ग में लिख दिया है द्वापर युग में कैसे के रूप में आया, लेकिन कि आता है तो सुनाने वाला भी जानता हो कैसे आता है, द्वापर में कैसे आता, त्रेता में कैसे आता, सत्ययुग में कैसे आता, उस सुनाने वाले की बुद्धि में भी बैठा हो और सुनाने सुनने वालों की भी बुद्धि में बैठे तो उसे भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। सुनना सुनाना हर जगह भक्ति मार्ग नहीं है। बोलो
समझना और समझाने के ढंग को ज्ञान मार्ग कहते
हैं। यहाँ ढंग सुनने सुनाने के साथ साथ अगर समझने वाला सुनाने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाले भी समझ रहे हैं तो उसे ज्ञान मार्ग कहेंगे। समझना बुद्धि का काम है और सुनना कान का काम है। कान में जो कुछ सुना गया उसको बुद्धि से सुन करके ग्रहण नहीं किया और उस पर बुद्धि नहीं चलाई तो भक्ति मार्ग हो जाता है। गुरु जी ने जो कहा सत्यवचन महाराज ठीक है कृपा निधान, तो भक्त लोग तो यही कहेंगे ठीक है कृपा निधान सत्य है दया निधान, जो बोलेंगे सो सत्य, लेकिन दिमाग से सोचा नहीं। तो अभी आप पूछना क्या चाहते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। सुनना सुनाना ज्ञान मार्ग वो भक्ति मार्ग, सिर्फ सुनना सुनाना और समझना समझाना ज्ञान मार्ग। हाँ जी
उसे साबित करना,
हाँ
उसे साबित करना,
उसे
साबित करना,
साबित करना, साबित तो कर दिया। बुद्धि के साथ समझना समझाना होता है और सिर्फ कान में सुन लिया और सुनाने वाले ने कान में सुना दिया वो भक्ति मार्ग, बुद्धि अप्लाई नहीं की।
शंकर ने कामदेव को भस्म किया,
हाँ?
शंकर ने कामदेव को भस्म किया,
हाँ?
काम तो विकार है वो तो दैवी गुण नहीं है।
काम विकार में दैवी गुण नहीं है,
काम तो विकारी विकारी गुण है दैवी गुण तो नहीं है, तो कामदेव का क्यों रहा है?
वो देता है कि लेता है, सब क्या माथा मोड़ लेता है या कुछ देता है काम विकार है? जिसको भस्म किया वो देव था, कौन सी युग में भस्म किया, सत्ययुग में भस्म किया या त्रेता युग में भस्म किया? वहां तो देवता होते हैं, वहां भस्म किया क्या? वहां तो जो भी होते हैं सब सत्व प्रधान होते हैं, सत्व सामान्य होते हैं, वहां भस्म करने की बात ही नहीं। कौन सी चीज को भस्म किया जाता है, कचड़े को भस्म किया जाता है या अच्छी चीज को भस्म किया जाता है? कचड़े को भस्म किया जाता है, जो तमो प्रधान हो जाए उसको भस्म किया जाता है। तो सत्ययुग में तो सत्व प्रधान कामदेव होता है, वो तो देवता कहा जाए, सुखी सुख देता है दुख तो नहीं देता, बच्चा पैदा होता है तो भी दुख नहीं देता, बच्चे पैदा करने की एक्ट की जाती है तो भी दुख नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं, क्योंकि सेठ इंद्रियों से काम होता है। तो वहां तो देव को है ना ठीक है, कि कलयुग के अंत में काम विकार, जो काम विकार में आसक्त होने वाले हैं वो देवता हैं, तो असुर है, राक्षसी है, राक्षसी वृत्ति होती उस समय। तो देवता को भस्म किया या असुर बन गया था उसको भस्म किया, आसुरीपन को भस्म किया है।
गीता में भगवान ने किसको ज्ञान दिया है, पिता जैसे सन्यासी को ज्ञान दिया है या अर्जुन जैसी गृहस्थियों को दिया, वो द्रोणाचार्य को सन्यासी बताए।
आपका प्रश्न सिर्फ एक ही है, ज्ञान किसको दिया, द्रोणाचार्य को दिया, भीष्म पितामह को दिया माने विद्वान पंडित आचार्यों को दिया, या सन्यासी भीष्म पितामह जैसों को दिया, या गृहस्थी अर्जुन को दिया, किसको दिया?
बताया मगर द्रोणाचार्य को
द्रोणाचार्य गृहस्थी तो थे लेकिन वो आचार्य थे। क्या वो अपने को समझते थे हम आचार्य हैं, आचार विचार समझाने वाले सिखाने वाले हैं, आचार विचार माने कैसे रहना है जिंदगी में वो सिखाने वाले। उनका आचार विचार कैसा था, ये सूत्र है इसको नहीं पढ़ाई पढ़ाना है, ये ऊंचे कुल का है राज कुल का है इसको पढ़ाई पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए ये अच्छा आचार विचार है, है? तो उनको बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पंडित आचार्य भी बैठे हुए हैं अभी दुनिया में, द्रोणाचार्य की तरह बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित आचार्य बैठे हुए हैं, मेरा बहुत अहंकार, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े सुजान हैं, सुज्ञान हैं, पंडिताई में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता, चाहे वो साइंस वाले पंडित हो, चाहे वो हिस्ट्री के पंडित हो, चाहे वो ज्योग्राफी के पंडित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के पंडित हो, उनको बहुत अहंकार रहता है, इसलिए वो भगवान का ज्ञान नहीं सुनते हैं, सुनते हुए भी एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, और जो सन्यासी हैं, उनको अपनी प्योरिटी का बड़ा अहंकार रहता है, अरे हमने घर बार छोड़ा है, हमने काम विकार को छोड़ा है, घर बार छोड़ने को वो काम विकार छोड़ना समझते हैं, तो बहुत अहंकार चढ़ा रहता है, ये तो नीचे है, गंध में पड़ा रहता है, मैंने तो गंध की दुनिया छोड़ दी, तो ये जो अहंकार है ना, उस अहंकार के कारण वो भगवान का ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, वो भी ज्ञान को नहीं सुनते, भगवान के ज्ञान को कौन सुनते हैं, अर्जुन जैसे गृहस्थी जो अपने को गिरी हस्ती समझते हैं, अरे हम पतित हो गए, अरे हम कहां जुआ छीछी में पड़े हुए, छोड़ना चाहते तो भी छूटता
नहीं,
छूटता नहीं, ऐसे अपन के अंदर जिन्हें हीन भावना भरी हुई है, नीचे अपने को समझते हैं, पतित समझते हैं, सन्यासी अपने पतित समझते हैं, पावन समझते हैं, पावन समझते हैं, उनको पतित पावन भगवान की क्या दरकार। तो अर्जुन जैसे गृहस्थी ही ज्ञान लेते हैं जिनको कोई अहंकार नहीं, अहंकारी को भगवान का ज्ञान नसीब नहीं होता। और
बाबा ये कर्ण को पहले दिक्कत है ना, कर्ण कर्ण
कर्ण
कर्ण कर्ण, हाँ वो पहले दिक्कत है ना,
सबसे बड़ा उनके क्षेत्र में भी बड़ा दिखा रहा है, उस विद्या में भी बड़ा दिखा रहा
है। महारथी था या नहीं था?
महारथी
महारथी था
अर्जुन सिंह।
और कौरवों की सेना का सेनापति था या पांडवों की सेना का सेनापति था?
कौरव।
महारथी था
सचिन,
कौरवों की सेना का सेनापति था क्या?
दान पुण्य करने वाले दान
और बहुत दानी था क्या?
बहुत दानी
था। हाँ बहुत दानी था, महादानी कहते हैं। बड़े से बड़ा दान भी अगर बात आ जाए वो भी करने के लिए तैयार। और पांडवों में सबसे बड़ा था वो।
हाँ सबसे
क्या? लेकिन पांडव नहीं कहा गया, पांडवों में उसकी गिनती
नहीं
हुई। क्यों नहीं हुई?
कौरवों के दिया।
कौरवों में उसकी गिनती क्यों हुई? क्योंकि कौरवों का पक्ष लिया उसने, कौरवों का पक्ष लिया और पांडवों का पक्ष नहीं लिया। पांडव इसलिए भी नहीं कहा गया कि वो पंडा बाप का बच्चा नहीं बना। ब्रह्मा का बच्चा तो ब्राह्मण, शिव का बच्चा तो शैव, ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्म समाजी ब्राह्मण कहा जाता है ना, विष्णु का बच्चा वैष्णव, ऐसे ही पांडु का बच्चा पांडव। तो सबसे बड़ा पंडा कौन है रास्ता दिखाने वाला दुनिया में? पंडा क्या करता है? भगवान के घर का रास्ता दिखाता है ना। तो सबसे बड़ा पंडा कौन है? सबसे बड़ा पंडा तो बाप शिव बाबा। तो उसके जो पुत्र हुए वो पांडव कहे गए, कर्ण को पांडव
नहीं
कहा जाता। वो भगवान का रास्ता नहीं बताता है, वो दुर्योधन के घर का रास्ता बताता है, धृतराष्ट्र के घर का रास्ता बताता है। ताकत तो बहुत थी क्योंकि कुंती का पहला पुत्र था क्या?
पहला पुत्र
है। लेकिन सूर्य पुत्र कहा जाता है, पंडा पुत्र नहीं कहा जाता है।
सूर्यपुत्र मना सूर्यवंश में
है,
सूर्यपुत्र मना सूर्यवंश में।
भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं पहले? पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो जड़ सूर्य नहीं, वो तो आसमान का सूरज चांद सितारे अलग। ये धरती में कोई पार्ट बजाने वाले सूर्य चांद सितारे हैं क्या? तो इस सृष्टि में सबसे पहले जो साकार सृष्टि बनती है चैतन्य सृष्टि, उनमें पहले पहले कौन पैदा होते हैं? राक्षस संप्रदाय पैदा होते हैं या देवता संप्रदाय पहले पैदा होते हैं? कौन बड़े थे? दिति से पैदा हुए दैत्य बड़े थे या आदिति से पैदा होने वाले अद्वैत देवताएं बड़े थे? बड़े कौन थे? पहले किसने पैदाइश, किसकी पैदाइश हुई? राक्षसों की पहले पैदाइश होती। तो भगवान जिसको आके ज्ञान देता है, प्रजापिता कहो सूर्य कहो, बात तो एक ही है। उससे सूर्य को जो ज्ञान देने वाला है उसमें तो देवान नहीं है, है देवान? शिव में तो देवान नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसमें देवान होता है या नहीं होता है? उसमें भी देवहन होता है, उसमें ही सबसे जास्ती देवहन होता है। तो पहले राक्षस पैदा होते, इसलिए कर्ण को सूर्य का पुत्र दिखाया गया। और
कृष्ण जी तो शास्त्रों में गाय नहीं है
आ?
तो गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते है ना
आ?
तो गीता का भगवान मैं हूँ, वो गाने वाला कहाँ कहाँ है?
गीता का भगवान मैं हूँ को कहने वाला परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है।
श्री कृष्ण समझते है ना ऐसा
है,
श्री कृष्ण समझते है ऐसा ऐसा
बोलते। वो संगन भी कृष्ण है न कि सबकी पूरे जन्म लेने वाला कृष्ण है, संगम भी कृष्ण है। असली गीता का भगवान संगम भी कृष्ण है जिसमें शिव प्रवेश होता है,
तो इसी के कारण
बाप के रूप में, क्या जिसमें शिव बाप के रूप में माने गीतापति भगवान के रूप में प्रवेश करके कार्य करता है। कृष्ण वाली आत्मा नहीं है, गीता का पति है।
इसी के कारण लिखा हुआ है हुआ वो शास्त्र में
है,
इसी के कारण लिखा है क्या गीता का पति।
लेकिन उन्होंने क्या निराकार को समझा जिन्होंने लिखा है, उन्होंने निराकार को समझाया या साकार को समझा? उन्होंने साकार को समझ लिया। जो भी संगम जी कृष्ण है वो निराकारी स्टेज वाला होगा या साकारी स्टेज वाला होगा? तो निराकारी स्टेज वाला तो शिव ही हो गया। बाप समान हुआ या नहीं हुआ? तो बाप समान हुआ तो शिव ही हुआ ना। और तो निराकारी स्टेज वाली बात भूल गए मनुष्य गुरु, जैसे खुद साकार है उन्होंने भगवान को भी साकार समझ लिया। अब साकार तो दादा लेखराज जो ब्रह्मा का पार्ट हुआ वो साकार था, या कि संगमी कृष्ण साकार कहा जाए? दादा लेकर साकार थे।
तो कृष्ण कब साकार में जन्म लेगा? कृष्ण कब लेंगे जन्म?
कृष्ण साकार में जन्म कब लेगा?
कब लेगा ये पूछने वाला है।
कृष्ण साकार में जन्म तब लेगा जब जन्म देने वाला स्वयं 16 कला संपूर्ण की स्टेज से ऊपर चला जाएगा। बाप बड़ा होना चाहिए या छोटा? बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए?
बड़ा होना चाहिए
या छोटा होना चाहिए?
बड़ा होना चाहिए।
बड़ा होना चाहिए तो कलातीत स्टेज का होना चाहिए। कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ होता है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो उसको जन्म देने वाला कलातीत स्टेज का होगा, कलातीत होगा। तो कलातीत स्टेज कब आएगी? ब्रह्मा के लिए 33 साल, शंकर के लिए दूसरी मूर्ति के लिए 33 साल, फिर विष्णु भी कुछ पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? कि आते ही एक सेकंड में स्वर्ग बन जाए, एक सेकंड में कृष्ण का जन्म हो जाएगा? जमते जाम दो तो होता नहीं, हथेली में आम जमाया जाता है क्या? नहीं। तो वो आत्मा को भी कुछ टाइम लगता है, वो टाइम रुदा हुआ है, वो टाइम पूरा होगा और ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। जब ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो विष्णु का राज्य कुछ टाइम चलेगा या नहीं चलेगा? तुरंत कृष्ण का जन्म हो जाएगा, कुछ टाइम चलना चाहिए तब कृष्ण का जन्म हो। कृष्ण का जन्म हो तो कृष्ण के साथ फिर बाद में दूसरे दूसरे राधा कृष्ण जैसे बच्चों का भी जन्म हो। कितने बच्चों का जन्म होना है? 4.5 लाख बच्चों का जन्म होना है। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा?
नंबर
वन बाद जन्म होगा तो टाइम लगेगा ना, कि चुटकी में हो जाएगा 4.5 लाख बच्चों का जन्म?
नहीं,
टाइम लगेगा। तो अभी कितना टाइम बीत गया? 70 साल तो बीत गए,
30 साल बस।
अभी तो विष्णु की बात दिखाई नहीं पड़ रही, प्रत्यक्षता जो होगी वो पहली मूर्ति से होगी या दूसरी मूर्ति से होगी या जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी होगी तब होगी?
तीनों मूर्ति
शिव कहा जाता है, तो तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो तब प्रत्यक्षता हो। ऐसे तो नहीं कहा जाता एक मूर्ति शिव बाप या दो मूर्ति शिव बाप त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो तीन मूर्तियां जब इकट्ठी हो जाए तो इकट्ठी एकदम हो जाएंगी या उसमें भी टाइम लगेगा? दूसरी मूर्ति, पहली मूर्ति ने 69 तक काम किया और दूसरी मूर्ति आई तो कितना टाइम लगा? टाइम लगा कि नहीं? यह दूसरी मूर्ति फट से ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद तुरंत प्रत्यक्ष हो गई? प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 7-8 साल लगे ना। ऐसे ही पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगा? नहीं लगा। कितना टाइम लगा? 15-16 साल लग गए। जब माउंट आबू में आ गए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम धरा, तब ब्रह्मा का नाम पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई संसार के सामने। सन 36-37 से लेकर के 50-51 तक का 15-16 साल का टाइम लगा। पहली मूर्ति को 15-16 साल का टाइम लग गया। पहले तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते थे ब्रह्मा कौन है। जब मुरली उनके मुख से चलने लगी तब पता चला कि ये ब्रह्मा है। उन्होंने भी अपने को समझा कि हाँ मैं ब्रह्मा हूं। फिर हिम्मत करते 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 पाकिस्तान से उठ करके जब 50-51 में दिल्ली को माउंट आबू आ गए, तब भी हिम्मत नहीं पड़ी कि माउंट आबू में नाम रख दे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नहीं, जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला है, कौन सा सेंटर, क्या नाम था उसका, कमला नगर, तब पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। तो 16 साल पहली मूर्ति को लग गए, दूसरी मूर्ति को 7-8 साल लग गए, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना टाइम कम से कम लगेगा? 3-4 साल लगेंगे? नहीं, कम से कब तक है? 2004 ही क्यों, 2000 से क्यों नहीं है? हाँ, चारों युगों की शूटिंग जो है वो उसका टाइम जुदा हुआ है। संभवामि युगे युगे जो शास्त्रों में कह दिया है तो उसका राज क्या है? ये संगम युगी शूटिंग में राज भरा हुआ है कि भगवान जो है जब इस सृष्टि पर आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग कराते हैं। वो ड्रामा होता है ना, तो उसमें 3-4 सीन होते हैं, है? तो ऐसे ही यहां भी इस ड्रामा के 3-4 सीन हैं। देवता वर्ण का सतयुग, क्षत्रिय वर्ण का त्रेता युग, वैश्य वर्ण का द्वापर युग और शूद्र वर्ण का कलयुग। चारों युगों की शूटिंग का टाइम लुदा हुआ। जो शक्ति चक्र है ना, उस शक्ति चक्र में चारों युगों की शूटिंग के निमित्त कौन कौन है वो चित्र दिखाए हुए हैं। सत्युग की शूटिंग में निमित्त कौन दिखाए गए? जो सत्युग, सत्युग का जो नक्शा बन, वो ना, जो चौबड़ी बनी हुई है चार युगों की, उसमें सत्युग जो दिखाया गया है उसमें कौन बैठे हुए दिखाए गए?
लक्ष्मी नारायण,
राधा कृष्ण दिखाए गए। एडवांस वाले भी चित्र भूलते जा रहे हैं बाबा के बनाए हुए, तो बेसिक वालों की तो बात ही क्या है। राधा कृष्ण का चित्र दिखाया गया है तो इससे साबित होता है कि राधा कृष्ण की आत्मा कौन है, साकार में कौन थी, ब्रह्मा और ओम राधे। तो ओम राधे और ब्रह्मा ने जब तक पाठ बजाया तब तक पहली मूर्ति निमित्त बनकर के हुई और उसकी सहयोग नहीं शक्ति खास। वो टाइम उनका था कितना साल, थ्री इयर्स साकार शरीर से, 33 इयर्स साकार शरीर से पाठ बजाया। बहुत सती की शूटिंग होती रही उस समय, और जब तक दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष न हो तब तक उनकी शूटिंग होती रही। जब दूसरी मूर्ति बाप की प्रत्यक्षता वर्ष, अव्यक्त वाणी में जो बोला गया है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हो, छत्तर में जिसका प्लान बनाया है, तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, तो कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? अरे सती की शूटिंग में राधा कृष्ण की आत्मा निमित्त बनी साकार में, तो बाद में जो सन 76 से शूटिंग का काम शुरू हुआ उसमें कौन सी निमित्त मूर्ति निमित्त साकार में मैदान में आई? राम की आत्मा। तो त्रेता युग में उस जो चौघड़ा बनाया गया है, षष्ठी चक्र का चित्र दिया है, घड़ी का चित्र है, उसमें त्रेता युग दिखाया गया है। उस त्रेता युग में राम सीता को दिखाया गया। तो त्रेता युग की शूटिंग का पीरियड भी होगा। वो सन 76 से लेकर के 87-88 तक मुद्दा हुआ है, 12 साल। सन 87 में ब्रह्मा बाबा ने आना बंद कर दिया, एक साल नहीं आए, सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। 87-88 में नहीं आए और 89-90 में प्रत्यक्षता हो गई एडवांस पार्टी की। एडवांस पार्टी में, बेसिक पार्टी में कृष्ण और एडवांस पार्टी में कृष्ण, तो कुछ खासियत होगी ना। तो 89-90 में 9 कन्याएं बिन फेरे हम 13 बन गई। दुनिया भारतवर्ष में ऐसे कहीं होता है कि कोई कन्या बिना शादी किए किसी की बन करके रह जाए जिंदगी भर? है, चलो एक बन जाएगी, दो बन जाएगी, नौ नौ कन्या इकट्ठी बन जाए, ऐसे होता है कहीं? तो एक साल में ही 89-90 के साल में 9 कन्याएं समर्पित हो गई। तो बिजली की तरह कौंध गई। त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई, कृष्ण की आत्मा 100 साल पूरे कर लिए ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है, तो मृत्यु लोक उसका खलास होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? बैकुंठ लोक। कृष्ण की आत्मा बैकुंठ में प्रवेश कर जाती है, भले गर्भ में प्रवेश किया, प्रवेश तो किया ना, 100 साल पूरे हो गए। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग 91 से लेकर के 98 तक होती है, 8 वर्ष। तो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है, क्या कहां जन्म लेता है? है
जेल में,
जेल में जन्म लेता है। जेल में डालता कौन है?
आसुर,
आसुरी संप्रदाय, कंस की जरा सिंह जी, वो उसे जेल में डालते हैं। जो भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण को दिखाया है वो कौन से राधा कृष्ण को दिखाया? कौन से कृष्ण की बात है? सतवी कृष्ण की बात है या संगम भी कृष्ण की बात है जिसके पीछे कंसी जरा सिंधी लगे हुए थे? संगम भी कृष्ण की बात है। तो जन्म लेता है तो जेल में जन्म लेता है, डबल जेल है, दुनिया की भी जेल और वो स्थूल जेल भी। तो जेल में जन्म लेता है, कौन से दिन जन्म लेता है? जन्माष्टमी के दिन, हाँ, और जन्म लेने के बाद जब स्वतंत्र होता है तो कौन से दिन होता है? 15 अगस्त जो मनाते हैं वो भी तो कुछ यादगार होगी ना। स्वतंत्रता दिवस वही दिन, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे कभी होता नहीं है, एक दो दिन का अंतर जरूर होता है। तो स्वतंत्रता वर्ष भी हुआ और जन्माष्टमी भी हुई, वो शूटिंग हो गई द्वापर के अंत में। द्वापर के अंत में शूटिंग होती है तो वो भक्ति मार्ग में लिख दिया है। क्या सतयुग के अंत में हिरण्यकश्यप आया, त्रेता के अंत में राम आया, द्वापर के अंत में कृष्ण आया। आया माने क्या? प्रत्यक्ष हुआ। आया माने क्या? बच्चा पहले तो गुप्त होता है पेट में, किसी को पता थोड़ा ही होता, फिर जब जन्म लेता है तो कहते हैं बच्चा आया। आया माने प्रत्यक्ष हुआ संसार में, तो ये बेहद की बात है। कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष हुई माने द्वापर युग में जन्म हुआ। द्वापर युग के अंत में कृष्ण का करिश्मा दिखाया कि महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में, और कलयुगी पापी युग की स्थापना हो गई, ऐसे दिखाते हैं ना। फिर बाद में कलयुग की शूटिंग में कलंकी अवतार का टाइम चल रहा है अभी। क्या अभी जो काम कृष्ण की सोल नहीं कर पाई, जीते जी भी नहीं कर पाई, शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं कर पाई, क्या क्या नहीं कर पाई है? स्वर्ग स्थापन तो बाद में होता है। कृष्ण की सोल मनुष्य आत्मा है या भगवान है? मनुष्य आत्मा ही तो है। तो मनुष्य आत्मा जो है वो दुनिया को कब्रस्तान बनाती है या परिस्थान बनाती है? जब तमो प्रधान बनती है मनुष्य आत्मा तो दुनिया को कब्रस्तान बनाती है। कब्रस्तान बनाने वालों में पहला नंबर किसका होना चाहिए? अच्छा, सतयुग की जब शुरुआत होती है तो पहला नंबर कौन जन्म लेता है? कृष्ण जन्म लेता है पहला पत्ता, जब सतयुग बनता है, निमित्त बनता है ना। ऐसे ही जो सतयुग बना, क्या परिस्थान बना, तो कृष्ण का अव्वल नंबर, वो तो सतो प्रधान स्टेज थी, वही कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान कभी बनती होगी कि नहीं? जब तमो प्रधान बनती है तो दिल्ली कब्रस्तान बनती है। दिल्ली नहीं, सारा भारत कब्रस्तान बनता है, सारी दुनिया कब्रस्तान बनती है। लेकिन है यहां अंदर ज्ञान की बात, बेसिक और एडवांस के अंदर की बात। तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या वो जगदम्बा जगदम्बा नहीं है? उसने अम्मा का पार्ट, जगत की अम्मा का पार्ट वास्तव में नहीं बजाया, उसने उतनी सहन शक्ति धारण नहीं की। किसने धारण की? ब्रह्मा ने धारण की। तो वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इनको तारी भुज वाले ब्रह्मा को किसको निमित्त बना दिया? ओमराज मम्मा को निमित्त बना दिया थोड़े समय के लिए, जब तक असली ना आवे। तो एडवांस पार्टी में असली निकलती है। जिसने एक ही आदमी मम्मा बाबा को भी ज्ञान दिया, वो ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे ना, कंट्रोल करते थे। तो वो ही माता यज्ञ की आदि वाली फिर एडवांस पार्टी में फिर प्रत्यक्ष होती। इसलिए अभ्यक्तवाणी मुरली में इशारा दिए है, बताया है, जगदम्बा अंत में जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। क्या? महाकाली। शंकर के माथे पर भी चंद्रमा प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं। और किसके माथे पे दिखाते हैं?
जगदम्बा को पर
महाकाली के, जगदम्बा के माथे पर नहीं,
महाकाली
के माथे पर भी चंद्रमा प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं। तो जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो ब्रह्मा की सोल ही उसमें प्रवेश करके तमो प्रधानता का पार्ट हो जाती है, तब का संहार करती है आसुर संस्कार वालों का। तो ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, जितने भी आसुरी संप्रदाय हैं, उन सबका सब का विनाश कर देगी। कितने बचेंगे? आठ बचेगा, वो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, उनमें भी नंबर बनेंगे।
अरे आठ बचेगी
है,
आठ बचेगा,
आठ बचेगा। जो धर्मराज सजाए नहीं खाएंगे, महाकाली का खाना नहीं अनुभव करेंगे,
महाकाली का अनुभव करना
है,
अनुभव करना महाकाली
का। अच्छा विनाश कौन करते हैं? शंकर करता है। यह शक्तियां संहार कहानी बनती है, शक्तियां संहार कहानी बनती है। तो महाकाली को ढेर बुझाए हैं, कोई अकेली है क्या?
ढेर बुझाए
हैं,
अकेले नहीं, ढेर।
काला मुंह करने वाली ज्ञान में भी चलती है, फिर काला मुंह भी करती रहती है। तो काला मुंह करने वाली एक होगी या ढेर होंगी? ढेर होगी और सब प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो निमित्त बनती है, इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। भगवान निमित्त नहीं बनता है, पांव रखती है, परवाह नहीं करती है। क्या उसकी भी परवाह नहीं करती है?
और सत्यों के अंत में हिरण्य कश्यप
है,
सत्यों के अंत में
हिरण्य
कश्यप होता है।
तो सब किसे कहा जाता है? ये हिरण्य माने सोने जैसी जो अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उन सबको अपने कब्जे में ले लेती है। वो अभी भी कब्जे में हाँ जी, जो अच्छी अच्छी आत्माएं थी वो सब सन 76 तक कब्जे में आ चुकी थी। उनके तेज को उस समय तक उन्होंने पी लिया, सात नारायण दिखाए जाते हैं लास्ट वाले, कृष्ण जय कृष्ण के भाई है। वो सब मार लिए कि नहीं मार लिए? यहाँ शरीर से मारने की बात है या ज्ञान में से मारने की बात है? ज्ञान में मार लिए, वो एडवांस ज्ञान नहीं उठा सके। कंस ने उनको कोस लिया, उनकी पवित्रता को भंग कर दिया, पवित्रता भंग हुई और उसके बाद बुद्धि चलती नहीं। वो कंस ने कोस लिए।
शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय वालों को झगड़ा दिखाते हैं शास्त्रों में, शैव संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय
और विष्णु और शंकर का झगड़ा नहीं दिखाते
माना। वो संप्रदाय वालों फॉलो करने वाले विष्णु को पहचान नहीं सकते हैं क्या माना? कुछ
अरे जब विष्णु और शंकर को ही झगड़ा दिखा दिया शास्त्रों में तो फॉलोअर उनका साथ नहीं देंगे?
तो विष्णु माना वो माता को कहते हैं ना वैष्णवी को,
हाँ,
तो झगड़ा माना
तो जो विजय माला है उस विजय माला में जो ऐड होगी उसके फॉलोअर नहीं होंगे?
फॉलोअर तो
है। और रुद्र माला है उसमें फॉलोअर नहीं होंगे? होंगे। तो दोनों संप्रदाय आपस में लड़ते हैं। हिस्ट्री की बातें है,
माना धारणाएं लगते
हैं। है? वो कहते हैं ये बात सच्ची, वो कहते हैं ये बात सच्ची।
कही थी बाबा आपने, मतलब माता भी है, चंदा माता, रत्न माता, अपने क्या देने गए
ओ, सर्विस समाचार बाद में सुनाना। अभी जो बात अंदर सर्विस में गई थी तो जो बात उन लोगों ने पूछी और आपने जवाब नहीं दे पाया वो बातें पूछो।
सर्विस हो गया।
लेकिन कोई बात उन्होंने ऐसी पूछी हो जो आप जवाब ठीक से न दे पाए हो, वो बात यहाँ पूछो।
वाल प्रश्न अड़ी चपलेको
अभी
చెప్పండి చదువు
బస్ ఓగ్యా
మానస్ ఏ బుందగల్కు గయతే మాతా శంకర్ కా పాత్ కుచ్ భీ నహీ సారే బ్రహ్మాయి కాతే తీనో పాత్ ఐసా హై నా మురళీ మే
పాట్ సాకార్ మే హోతా హై పాట్ ధారీ సాకార్ మే హోతే హై యా సూక్ష్మ బతన్ మే హోతే హై పాట్ కహాన్ బజాయా జాతా హై साकार में पाठ बजाया होगा तो साकार में मूर्तियां में बनेगी, या निराकार और आकार में सूक्ष्म बदन में पाठ बजाया होगा तो मूर्तियां बनेंगी। यादगार कब बनेगी?
साकार बने के बाद।
साकार पाठ बजाएंगे तो मूर्ति बनेगी, साकार में पाठ ही नहीं बजाया होगा तो मूर्ति कैसे बनेगी? जवाब ही नहीं देना आता है।
ब्रह्म
ब्रह्मी शंकर बनते हैं, ब्रह्म ही विष्णु बनते हैं और ब्रह्म ही जन्म लेकर के फिर शंकर बनते हैं।
हाँ तो शंकर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, कि एक मूर्ति शिव कहा जाता है। मूर्ति माने साकार या अमूर्त माने साकार? ब्रह्मा को अमूर्त, जो ब्रह्मा अभी पाठ बजा रही है ब्रह्मा की सोल, उसे अमूर्त कहेंगे या मूर्त कहेंगे? वो तो अमूर्त है, उसकी मूर्ति अभी है ही नहीं, वो तो गई 69 में।
సిస్టర్స్ చెప్పిన బలబాల ప్రేమాబాబ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వచ్చి కోపంగా వచ్చి నేను ఎలా చేస్తాను ఈ సంస్థ అలా చేస్తానని చెప్తున్నాను ఆయన దీని నుంచి వెళ్ళిపోయినారు, వెళ్ళిపోయినారు చెప్తున్నారు మీ బాబు వచ్చి ప్రమాణంగా అందరినీ తీసేసుకుంటున్నాడు, మరి పక్క నగరంలోనే వస్తారని భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు కదా, ఆ పక్క నగరమే కదా కావాల్సింది, ఇప్పుడు మరి బ్రహ్మబాలం మరీ వచ్చి అని అడుగుతున్నాను అమ్మకి.